आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
नमस्कार दोस्तों, 31 जुलाई 2025 की प्यारी सी शाम है, दिन है थर्सडे का और घड़ी में 5 बजते ही मैं भव्या पांडे आ गई हूँ आप सभी को खबरों का रुख कराने। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और अगले एक घंटे हमारा साथ बना रहेगा। आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईहुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर एक कार्यक्रम सुना जा रहा है। तो आज सबसे पहले लेकर आऊंगी आपके लिए आज के ताजा समाचार। 7 मार्च 2025 की रात को सिडनी में अपने घर लौट रही भारतीय मूल की प्रभा अरुण कुमार पर उस समय चाकू से हमला किया गया था जब वे फोन पर अपने पति से बात कर रही थी जो कि भारत में थे। अगले दिन अस्पताल में ही उनकी मौत हो गई थी। अब इस मामले में 21 और 22 जुलाई को एक 2 दिवसीय सुनवाई हुई और हालांकि कॉर्नर ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कोई निष्कर्ष जारी अब तक नहीं किए हैं, लेकिन ये जो मामला है ये अब दोबारा से पुलिस के पास जांच के लिए भेज दिया गया है। तो आज के शो में हम समझेंगे कि आखिर कॉर्नर कोर्ट होता क्या है, इसमें क्या कार्रवाई होती है और प्रभा कुमार का जो ये पूरा मामला है ये वहां तक आखिर पहुंचा कैसे। इसके अलावा मेलबर्न में हाल ही में सामने आए चाइल्ड केयर व्यवस्था में बच्चों के यौन शोषण के मामले ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में SBS हिंदी ने बातचीत की थी चाइल्ड थेरेपिस्ट डॉक्टर कोपल सिन्हा से और इस बातचीत का पहला भाग हम सुन चुके हैं और इसी बातचीत को आज हम आगे बढ़ाएंगे और सुनेंगे इसका दूसरा भाग। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड भी होगा आज और इसमें हम ऑस्ट्रेलिया में इंडिजीनियस और गैर इंडिजीनियस बच्चों के शिक्षा परिणामों में जो अंतर आता है उस पर प्रकाश डालेंगे। इसके अलावा आप में से मुझे कई लोग ये कहते हैं कि हमें हंसने हंसाने वाले अंश चाहिए यानी कॉमेडी के सेगमेंट्स चाहिए, तो आज मैं आपको मिलवाऊंगी अंकिता श्रीवास्तव से जो कि एक भारतीय कॉमेडियन है और हाल ही में अपनी सफल ऑस्ट्रेलिया यात्रा यानी ऑस्ट्रेलिया टूर से लौटी हैं और हमें वो बताती हैं कि भारत में कॉमेडी का जो भविष्य है वो सुनहरा है और भी उज्जवल होगा। तो ये सब कुछ होगा आज के कार्यक्रम में और कोशिश करूंगी कि कुछ गाने भी आप तक लेकर आऊं और आपके जो संदेश हैं वो मुझ तक 04397997677 पर आते रहने चाहिए। तो चलिए आज का शो शुरू करते हैं और आपको बताते चलूं कि आज एक खास गिव अवे यानी मूवी पासेस भी मैं आप तक लेकर आई हूं और उसके लिए आपके पास एक सवाल भी होगा जिसका जवाब आप मुझे भेजेंगे, लेकिन ये सब मैं आपको बताऊंगी कुछ ही देर में और फिलहाल अभी सुनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और विश्व भर में आखिर क्या हो रहा है।
प्रस्तुत है आज का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। लेबर पार्टी के बहुप्रतीक्षित छात्र ऋण विधेयक यानी कि स्टूडेंट डेट बिल के आज संसद में पारित होने के बाद 30 लाख ऑस्ट्रेलियाई छात्रों के स्टूडेंट डेट में कमी आएगी। सरकार ने पिछले हफ्ते अपने पहले कार्यक्रम के रूप में मौजूदा विश्वविद्यालयों और टेफ डेट में 20% की कटौती करने के लिए HECS डेट बिल पेश किया था। आपको बता दूं कि इन कानूनों का उद्देश्य छात्र ऋण को कम करने के साथ साथ पुनर्भुगतान प्रणाली में सुधार करना है। ये कटौती 1 जून के सूचकांकीकरण से पहले पूर्वव्यापी रूप से ऋण स्तरों पर लागू होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कर कार्यालय को इसे लागू करने में कुछ और महीने लग सकते हैं। वर्ष के अंत तक शेष राशि में संशोधन होने की उम्मीद है, जिससे कि छात्रों और स्नातकों को लगभग 16 अरब डॉलर की बचत होगी। वहीं जहां अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स कल से लागू होंगे, वित्त मंत्री जिम चामर्स ने कहा है कि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ऑस्ट्रेलियाई आयात पर पहले से तय 10% का बेसलाइन टैरिफ लागू होगा या नहीं। ट्रंप ने उन देशों के लिए 20% बेसलाइन टैरिफ की घोषणा की है जिनका अभी तक अमेरिका के साथ समझौता नहीं हुआ है। चामर्स ने चैनल 9 को बताया है कि ट्रंप प्रशासन की ओर से इतनी सारी व्यापार घोषणाएं हो रही हैं कि अमेरिकी समकक्षों के साथ बहुस्तरीय संवाद के बावजूद उन्हें ये निश्चित नहीं है कि आगे क्या होगा। बात करें इसराइल और गाजा की, तो इसराइल पर गाजा ने गहराते मानवीय संकट को कम करने का दबाव बढ़ाया है। आपको बता दें कि कनाडा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाला नवीनतम देश है और इस संदर्भ में एक अमरीकी एम्बेसडर मिडिल ईस्ट के लिए हाल ही में रवाना हुए हैं। ट्रंप प्रशासन के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ गाजा की स्थिति में बातचीत के लिए आज इसराइल पहुंचने वाले हैं। सहायता पहुंचाने में मदद करने वाली इजरायली सैन्य संस्था कोगाट ने बताया है कि मंगलवार को 220 ट्रक गाजा में दाखिल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां प्रतिदिन 500 से 600 ट्रकों की मांग कर रही है ताकि सहायता एजेंसियों के अनुसार भूख से जूझ रही आबादी की जरूरतों को पूरा कर सके। वहीं यूक्रेन ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस पर युद्ध विराम के लिए दबाव डालने के हालिया कदमों का स्वागत किया है, जिसमें रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर आर्थिक पेनल्टीज लगाना शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन में हत्याएं रोकने के लिए 10 से 12 दिन का समय दिया जा रहा है, जिससे 2 हफ्ते पहले रूसी नेता को दी गई 50 दिन की सीमा समय कम हो जाती है। बात करें सिडनी की, तो सिडनी में मुफ्त रेल यात्रा की अवधि शनिवार सुबह 1 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। औद्योगिक हड़ताल के कारण महीने से चल रहे व्यवधानों को देखते हुए आज से हफ्ते के अंत तक शहर में रेल और मेट्रो सेवाएं मुफ्त रहेंगी। इस महीने की शुरुआत में रेल कर्मचारियों के साथ एक नए सिडनी ट्रेन्स और NSW ट्रेन लिंक एंटरप्राइज समझौते पर सहमति बनी, जिससे कि राज्य सरकार और यूनियन के बीच गतिरोध समाप्त हो गया है। बात करें भारत की, तो भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1-2 से फिलहाल पीछे है। यदि भारतीय टीम 5वां टेस्ट मैच जीत जाती है तो उनके पास टेस्ट सीरीज में बराबरी हासिल करने का सुनहरा मौका होगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला 31 जुलाई यानी कि आज द ओवल के ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस मैच के पहले ही भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर और बल्लेबाज चोट की वजह से पूरे टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह टीम में इस बार N जगदीशन को लिया गया है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि सिडनी वासियों के लिए जो ट्रैवल है यानी यातायात, वो कुछ दिनों के लिए अब निशुल्क है। आपको बता दूं कि जब मैं पहली बार सिडनी गई थी तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ था ये जानकर कि वहां पर जो ट्रैवल होता है वो आप अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, जबकि मेलबर्न में ये करने के लिए आपको एक खास कार्ड बनवाना पड़ता है जिसे माइकी कहते हैं। तो ये देखकर मैं काफ़ी हैरान थी, क्योंकि मुझे लगा था कि ये जो माइकी कार्ड है ये ऑस्ट्रेलिया के सभी अन्य राज्यों में होता होगा, लेकिन सिडनी इस मामले में मेलबर्न से एक कदम आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि कोरोनर कोर्ट आखिर क्या होता है। तो 7 मार्च 2015 की रात को सिडनी में अपने घर लौट रही भारतीय मूल की एक महिला जिनका नाम प्रभा अरुण कुमार था, उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। अब हुआ ऐसा कि इस मामले में 21 और 22 जुलाई को 2 दिवसीय सुनवाई हुई और हालांकि कोरोनर ने अपनी अंतिम रिपोर्ट या निष्कर्ष अब तक जारी नहीं किए हैं, लेकिन ये जो मामला है ये अब दोबारा से पुलिस के पास भेज दिया गया है। तो अब इस आने वाले अंश में हम समझेंगे कि ये कोरोनर कोर्ट होता क्या है, इसमें क्या कार्रवाई की जाती है और ये जो पूरा मामला है प्रभा कुमार की मृत्यु का, ये वहां तक आखिर पहुंचा क्यों।
नमस्कार,
नमस्कार, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। 7 मार्च 2015 की रात सिडनी में अपने घर लौटते समय भारतीय मूल की प्रभा अरुण कुमार पर उस वक्त चाकू मारकर हमला किया गया जब वह फोन पर भारत में मौजूद अपने पति से बात कर रही थीं। अगले दिन अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। इस सनसनीखेज हत्या को अब 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने इस मामले में सुराग देने वाले को $1 मिलियन का इनाम देने की घोषणा भी की है, ताकि अपराधी को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। प्रभा के पति अरुण कुमार हमले के समय भारत में थे। रिपोर्टों के अनुसार हमलावर की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस बीते एक दशक से प्रयास कर रही है। जांच के सिलसिले में एक विशेष टीम भी भारत भेजी गई थी। इस केस की गहराई से जांच के लिए एक कोरोनर इंक्वेस्ट यानी मृत्यु जांच भी शुरू की गई है। इस संदर्भ में 21 और 22 जुलाई को 2 दिवसीय सुनवाई आयोजित हुई थी। हालांकि कोरोनर ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट या निष्कर्ष जारी नहीं किए हैं और ना ही निष्कर्ष घोषित करने की कोई तारीख तय की गई है। होमसाइड स्क्वाड कमांडर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट जो डवाही ने हाल ही में एक बयान में बताया,
I cannot see this investigation progressing without the assistance of the public, and I'm confident that there is someone out there that knows what happened.
We believe this was a targeted attack, and we are quite confident that we can rule out the motive of robbery. We want to identify who the person is that stabbed Prabha. We have not been able to achieve that. We want to also identify who may have contracted or requested that person to conduct that stabbing.
इस अंश में हम जुड़ रहे हैं समृद्धि वासुदेवा के साथ, जो एक क्रिमिनल लॉयर हैं और ऑस्ट्रेलिया में लॉ प्रैक्टिस करती हैं। समृद्धि, हमें ये बताएं कि ये जो कोरोनर कोर्ट है जिसमें प्रभा कुमार का केस अब पहुंच चुका है, तो इस कोर्ट में क्या होता है और इस केस में ऐसी क्या खास बात है जो इसको कोरोनर कोर्ट में रेफर किया गया है?
देखें, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। मैं एक लॉयर हूँ मेलबर्न में, मैं क्रिमिनल सिविल फैमिली माइग्रेशन सब प्रैक्टिस करती हूँ। तो बेसिकली इस केस में कॉरनर का क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉरनर ये जो इंक्वेस्ट होता है ये एक फॉर्मल कोर्ट हियरिंग होती है जो कॉर्नर में होती है कंडक्ट। इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं हम डेथ के बारे में, जब चीजें क्लियर नहीं होती, अनक्लियर सर्कमस्टांसेज होते हैं जब मतलब स्पेशली जब डेथ होती है और पर्टिकुलरली जब वो सडन होती है और अनएक्सपेक्टेड होती है, तो कुछ अनयूजुअल जब होता है तब इंक्वेस्ट होती है।
तो ये क्या सामान्य कोर्ट जो होते हैं उनसे अलग होता है?
हाँ जी, अलग है, बट इसमें कोई पनिशमेंट नहीं होती है, आप समझ रहे हैं? कोर्ट में तो फैसला सुनाया जाता है ना, इसमें कोई पनिशमेंट नहीं होती है। इसमें सिर्फ देखते हैं कि इसमें एक इन्वेस्टिगेशन, समझे आप, इन्वेस्टिगेशन होती है। इसमें विटनेसेस को बुलाया जाता है, जैसे कि डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर जो और या दूसरे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, ठीक है, या जिनकी फैमिली मेंबर्स हैं, जिनकी डेथ हुई है उनके फैमिली मेंबर्स को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये बेसिकली सिर्फ जानना चाहते हैं कि ये क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, जो अननोन सर्कमस्टांसेस हैं उनको, उनकी क्लैरिटी के लिए।
जी, यानी कि ये खाली एक जांच का जरिया है, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि प्रभा कुमार को क्यों और कैसे किस तरह मारा गया। जी
बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये ट्रांसपेरेंसी देगी प्रभा कुमार की फैमिली को, उनके चाहने वालों को जो उनके साथ थे, उनके लिए, और उनको आंसर देगी जो उनके मन में क्वेश्चन है उनको आंसर देगी। एक बहुत अच्छा तरीका है ये इस कंट्री में, कि इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। ये मतलब इसमें कोई पनिशमेंट नहीं होती, सिर्फ इसमें जांच पड़ताल होती है बेसिकली।
जी, अच्छा, एक और शब्द जो हम बार बार सुन रहे हैं प्रभा कुमार के केस में वो है इनक्वेस्ट, तो वो क्या है?
बेसिकली इनक्वेस्ट इज लाइक एन इन्वेस्टिगेशन, इसको यही कहते हैं बेसिकली। इट इज यूजली, ये होता है, सॉरी मैं इंग्लिश में बोलने लगी,
जी, जी, जी.
ये यूजली इनक्वेस्ट ओपन कोर्ट में होता है, ठीक है, जहाँ पे विटनेसेस को बुलाया जाता है, जैसे डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स या कोई और एक्सपर्ट्स हों, और इसमें सारे प्रूफ इकट्ठे किए जाते हैं, फैमिली जुड़ती है, बस ये बेसिकली एक रिकमेंडेशन देता है, कॉर्नर एक रिकमेंडेशन देता है, जैसे कि कोई हॉस्पिटल, जैसे कुछ हॉस्पिटल में हुआ उससे रिलेटेड, जो मतलब बेसिकली सिर्फ ये जांच पड़ताल ही है और इसका और अलग कोई मतलब नहीं है।
क्या ये सभी
इसमें फैसला नहीं सुनाया जाता, सॉरी
जी समृद्धि, क्या ये सभी केसेस के लिए किया जाता है कि कुछ चुनिंदा केसेस जो खास
चुनिंदा केसेस जी हाँ जी, जिनमें क्लैरिटी नहीं होती, आप समझ रहे हैं
जी,
सिर्फ
जी,
जब सडनली कोई डेथ होती है, सर्कमस्टांसेस डेथ के होते हैं, जब एक इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की जाती है कि सडनली कैसे हो गया, अनएक्सपेक्टेडली था, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट था, इसमें एक पब्लिक इंटरेस्ट भी, क्योंकि ये पब्लिकली ओपन हो चुका है केस, तो पब्लिक इंटरेस्ट भी अगर होता है तब भी ये होते हैं, हाँ जी, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का वो पूरे सिस्टम पे फर्क पड़ता है।
अच्छा, ये जो इंक्वेस्ट थी ये 2 दिन तक चली, यानी हियरिंग 2 दिन तक चली, और अभी तक जजेस ने इसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो अभी पेश नहीं करी हैं, तो क्या ये इंक्वेस्ट और ज्यादा चलने की उम्मीद है?
नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इसको दोबारा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर हो गई है तो अब आगे जो जांच पड़ताल है वही चलेगी जैसे नॉर्मल केसेस में होती है, बट इंक्वेस्ट की फाइंडिंग जरूर दी जाएंगी, अगर ये हो गया है सारा बताया जाएगा कि इंक्वेस्ट में ये इसमें हुआ क्या था, कॉरनर अपनी रिकमेंडेशन देंगे ताकि इस केस को बेटर तरीके से जांचा जाए।
जी, तो अब क्या होने की उम्मीद है, आपको क्या लगता है कि अब आगे की क्या प्रतिक्रिया होगी इस केस को लेकर?
बस वही जांच पड़ताल ही चलती रहेगी जी, मैं इसमें इतना ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी, बट ये जांच पड़ताल चलती रहे, पुलिस अपना काम करती रहेगी, आई थिंक पुलिस को अब पुलिस कम्युनिटी से हेल्प मांगेगी, पर्टिकुलरली जिनको कोई प्रूफ, जिनके पास कोई कोई सस्पेक्ट है, कोई प्रूफ है जिससे ये केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रहे, और जब तक मुजरिम जो सस्पेक्ट होता है वो पकड़ा ना जाए, उस पर चार्जेस ना हो, तो बस जांच पड़ताल ही चलती रहेगी जी, यही जो पार्ट होता है केस का।
बहुत बहुत धन्यवाद समृद्धि हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बता दें फिलहाल ये मामला न्यू साउथ वेल्स पुलिस अनसॉल्व्ड होमसाइड स्क्वाड को सौंपा गया है।
तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप तक लेकर आई नताशा कॉल, और जैसा कि आपने सुना कि ये जो केस है ये अभी भी कॉर्नर कोर्ट में चल रहा है और इसके परिणाम आने अभी बाकी हैं। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटकर हम सुनेंगे इस हफ्ते का ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड, और जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जो इंडिजीनियस बच्चे हैं उनका जब देखा जाता है कि उनके जो शिक्षा परिणाम हैं वो अन्य गैर इंडिजीनियस बच्चों के मुकाबले में जरा कम हैं। अब ऐसा क्यों है ये सब कुछ जानेंगे ब्रेक के बाद।
SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका फिर से स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या के साथ। तो ब्रेक से पहले हमने नजर डाली आज की खबरों पर और कॉर्नर कोर्ट से जुड़ी एक खास रिपोर्ट भी हम आप तक लेकर आए। वक्त हो रहा है 5:20, और आपको बता दूं कि अगर आप आज के शो में मेरे साथ जरा देरी से जुड़ रहे हैं तो आप हमारी कोई भी रिपोर्ट, न्यूज या इंटरव्यू को एक बार फिर से SBS हिंदी के फेसबुक पेज और वेबसाइट के माध्यम से सुन सकते हैं। फेसबुक पर आप हमें SBS हिंदी के नाम से ढूंढ सकते हैं, साथ ही sbs.com.au/hindi पर जाकर आप ये सभी कार्यक्रम फिर से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में इंडिजीनियस और गैर इंडिजीनियस बच्चों के शिक्षा परिणामों में एक बड़ा अंतर रहा है। हालांकि स्थिति अब पहले से जरा बेहतर है, लेकिन अब भी बहुत काम किया जाना रहता है। तो आइए इस अंश में समझेंगे कि किस तरह प्रथम राष्ट्र कार्यकर्ता, शिक्षक और छात्र एक साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं।
शिक्षा अवसरों तक पहुंचने का एक माध्यम है, लेकिन लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में इंडिजिनस छात्रों को सफलता की राह में बाधाओं का सामना करना पड़ा है। हालांकि चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं, लेकिन सकारात्मक बदलाव भी हो रहे हैं। इस कड़ी में हम इंडिजिनस शिक्षा विशेषज्ञों और छात्रों से जानेंगे कि सांस्कृतिक शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरह इंडिजिनस और पश्चिमी ज्ञान एक साथ आकर सभी छात्रों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। यूरोपीय उपनिवेशीकरण से पहले प्रथम राष्ट्र संस्कृतियों में ऐसी समृद्ध शिक्षा प्रणालियां थीं जो भूमि, ज्ञान और समुदाय से गहराई से जुड़ी हुई थी। ये परंपराएं आज भी मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान कर सकती हैं। लेकिन शिक्षा में असमानता अब भी मौजूद है। इंडिजिनस छात्रों की स्कूल उपस्थिति, साक्षरता और गणित क्षमता की दरें कम है। विश्वविद्यालयों में उनकी भागीदारी भी अपेक्षाकृत कम है। इसके पीछे ऐतिहासिक और वर्तमान के कारण हैं, जैसे भेदभाव, सांस्कृतिक रूप से समावेशी शिक्षा की कमी और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। 2008 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियाई लोगों से उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए, विशेष रूप से उन बच्चों को जबरन उनके परिवारों, समुदाय और देश से अलग किए जाने के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगी थी। इस क्षमा याचना के हिस्से के रूप में एक संकल्प लिया गया कि इंडिजिनस और गैर इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियाइयों के बीच जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद असमानता को दूर किया जाएगा, जिनमें शिक्षा भी शामिल है। नेशनल अबोरिजिनल एंड टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर एजुकेशन कोऑपरेशन की मुख्य सचिव और बॉडी एवं किजा व्यक्ति शैरन डेविस कहती हैं कि जब हम शिक्षा में अंतर को पाटने की बात करते हैं तो ये जरूरी है कि हम उस भेदभाव के इतिहास को पहचाने जिसका सामना इंडिजिनस बच्चों को करना पड़ा है।
Legislations and policies have explicitly worked to keep Aboriginal kids out of school. Since the beginning, there's a recent report actually from NIAC, the National Indigenous Youth Education Coalition, that people can just look up and Google, and it's highlighted policies like the exclusion on demand policies, which was introduced in the early 20th century. They actually had the policies written where non-Indigenous families could demand the removal of Aboriginal kids from classrooms.
National Agreement on Closing the Gap का एक प्रमुख लक्ष्य यह भी है कि सरकारें प्रथम राष्ट्र लोगों और समुदायों के साथ मिलकर काम करने के तरीकों में सुधार करें ताकि असमानता को दूर किया जा सके। शैरन डेविस समझाती हैं कि साझी निर्णय लेने की प्रक्रिया और समुदाय नियंत्रित क्षेत्र को सशक्त बनाना इंडिजिनस शिक्षक क्षेत्र को सशक्त बना सकता है।
We know that Aboriginal community controlled organizations are the most sustainable way to address the needs of communities, and where our people lead education, we see better engagement, better outcomes and stronger pathways for our young people. And probably hand in glove, just as important, is genuine partnership. So when our organisations have that decision-making authority, because we base our work on lived experience and not assumptions, and that's when you see real change.
Dr. Anthony McKnight, Awabakal, Gemroy और Yuin समुदाय से हैं। वे Wollongong विश्वविद्यालय के Woolloonga Indigenous Centre में कार्यरत हैं। उन्होंने Aboriginal शिक्षा शास्त्र को पाठ्यक्रम, नीति और अभ्यास में समाहित करने के तरीकों पर शोध करने और उन्हें सिखाने में कई साल व्यतीत किए हैं। डॉक्टर मैकनाइट का मानना है कि इंडिजिनस शिक्षा में क्लोजिंग द गैप के वास्तविक अर्थ को पुनः परिभाषित करने की जरूरत है।
Close the gap means that the Aboriginal person closes the gap to the Western education understanding, but it leaves a massive gap back to their own education system. For me, it should be about the Aboriginal child in the middle, and then the two knowledges come together to that middle ground. Our students have got to be skilled to be able to live in both knowledge systems.
शैरन डेविस का मानना है कि शैक्षिक सफलता को केवल मार्क्स या स्कूल में उपस्थिति जैसे मानकों पर मापने से एक बड़ा परिप्रेक्ष्य नजरअंदाज हो जाता है। शैरन का कहना है कि शैक्षिक परिणामों में सामने आए अंतर को भी उजागर करना आवश्यक है। वे नए आंकड़ों के हवाले से कहती हैं,
For example, the retention rates of Indigenous students in secondary school currently sits at around 59%. And compared to non-Indigenous students, it's around 85%. That comparison actually tells us that something in the system isn't working. The education system that we have was never designed for First Nations people. And when we see gaps in outcomes, that's more a reflection of how education has failed to serve Aboriginal and Torres Strait Islander students and young people learners, not the other way around.
पिछले साल Gamilaroi समुदाय की युवा रेटरी लेन ने डब्बो सीनियर कॉलेज में HSC पूरी करने का जश्न मनाया। वे न्यू साउथ वेल्स में ईयर 12 पूरा करने वाले अब तक के सबसे बड़े Aboriginal छात्र समूह का हिस्सा हैं। लेन कहती हैं कि सहयोगपूर्ण सीखने का माहौल ही सबसे बड़ा फर्क लाता है।
Accessibility to support, really. That was the difference between graduating or not, year 12. That was the major thing for me, was the support around the school.
उनके सहायक नेटवर्क में स्कूल स्टाफ, आदिवासी शिक्षक और नेशनल अबोरिजिनल स्पोर्ट्स कोऑपरेशन ऑस्ट्रेलिया के कार्यकर्ता शामिल थे। ये संगठन न्यू साउथ वेल्स और नॉर्दर्न टेरिटरी में कार्यक्रम संचालित करता है जो अबोरिजिनल छात्रों को उनकी संस्कृति से जोड़ने और स्कूल में सफलता पाने में मदद करता है।
I definitely had a lot of support from especially all the staff and also the NASCA workers. Like they'd come, they'd take you the lessons, they'd help you all the way through. And then the teachers were just there to help with anything.
Rhetoric ki maa Jenna Dale Dubbo Senior College mein deputy principal hai, जहां उनकी बेटी ने पढ़ाई पूरी की। जेना डेल अपने परिवार की पहली सदस्य थी जो विश्वविद्यालय गई। उनका मानना है कि विशेष रूप से तैयार किया गया सहयोग और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील वातावरण सभी छात्रों को अपनी शिक्षा से सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल करने में सक्षम बनाता है।
For me as an Indigenous person and thinking about everything that we've overcome in this country, that is an accomplishment. Because all the adversities that we've faced as Indigenous people, we have still been able to conquer a Western way of doing things, which is education.
Rhetori, Indigenous Studies में विशेषता के साथ Bachelor of Arts की पढ़ाई करेंगी। वे कहती हैं कि वे अपने समुदाय के युवा वर्ग को सफलता तक पहुंचने के नए अवसरों से जुड़ना चाहती हैं।
Trying to get myself in a position to educate other Indigenous kids that have lost it, that don't really know about it, and it's been lost through generations because of what has happened. So hopefully help be part of the process to revive the culture, bring it back to life.
ये ध्यान देने योग्य बात है कि एक अबोरिजिनल दृष्टिकोण से शिक्षा में अंतर को पाटना केवल शैक्षणिक परिणामों को बेहतर बनाना नहीं है। ये प्रथम राष्ट्र ज्ञान को सम्मान देने, समुदायों को नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाने और सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित स्थान तैयार करने की भी बात है। ये पहचान, गर्व और इस बात से भी जुड़ा है कि आने वाले पीढ़ियां अपनी शर्तों पर सफलता हासिल करते हुए अपनी संस्कृति से भी जुड़ी रहें। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के संच को SBS न्यूज से ज़ोए थॉमेडू और SBS हिंदी से वृषाली जैन ने आपके लिए प्रस्तुत किया।
तो दोस्तों, इस अंश को आप तक लेकर आई वृषाली जैन। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटकर मैं आपको इस हफ्ते के गिव अवे के बारे में बताऊंगी और साथ ही हम बात करेंगे कि मेलबर्न में जो हाल ही में चाइल्ड केयर व्यवस्था में यौन शोषण का मामला देखा गया है उस पर चाइल्ड थेरेपिस्ट डॉक्टर कोपल सिन्हा की क्या राय है। तो ये सब कुछ सुनेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें SBS हिंदी के साथ।
क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है SBS हिंदी के कार्यक्रम में, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या के साथ। तो मेलबर्न में हाल ही में सामने आया था एक मामला जहां पर चाइल्ड केयर व्यवस्था में यौन शोषण, बच्चों का यौन शोषण देखा गया, जिससे पूरा ऑस्ट्रेलिया बहुत हैरान रहा था। तो ऐसे में SBS हिंदी ने कुछ समय पहले कुछ अभिभावकों से बातचीत की थी और बात की थी चाइल्ड थेरेपिस्ट डॉक्टर कोपल सिन्हा से, जिन्होंने हमें समझाया था कि हम बच्चों से इस विषय पर किस तरह से चर्चा कर सकते हैं। इसका पहला भाग हम सुन चुके हैं और डॉक्टर कोपल सिन्हा के साथ ही हमने इस बातचीत को आगे बढ़ाया है और अब इस दूसरे अंश में हम समझेंगे कि कैसे समुदाय, स्कूल, सरकारें और चाइल्ड केयर व्यवस्था मिलकर बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं।
मेलबर्न में हाल में सामने आए चाइल्ड केयर व्यवस्था में यौन शोषण के मामले से पूरा देश सकते में है। ऐसे में SBS हिंदी ने बात की कुछ अभिभावकों से कि वे क्या सोचते हैं और कैसे इस पूरे मामले पर अपनी प्रक्रिया देते हैं। साथ ही हमने बात की है एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से, ताकि किस तरह से माता पिता अपने बच्चों से गुड टच बैड टच जैसे विषयों पर बात कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके बच्चे समाज में सुरक्षित रहें। तो डॉक्टर कोपल सिन्हा से हमारी बातचीत के पहले अंश में हमने इस विषय पर चर्चा की थी। इस दूसरे अंश में अब समझेंगे कि किस तरह से स्कूल, चाइल्ड केयर व्यवस्थाएं और माता पिता मिल करके एक सुरक्षित पर्यावरण का बच्चों के लिए निर्माण कर सकते हैं। आइए सुनते हैं ये बातचीत। तो डॉक्टर सिन्हा, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि पेरेंट्स और केयर गिवर्स, खासकर जिस तरीके की रिपोर्ट्स हम लोग आजकल सुन रहे हैं, केयर गिवर्स और पेरेंट्स किस तरह से ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्होंने बच्चे के लिए एक सुरक्षित परिवेश बनाया है जिसमें अगर किसी बच्चे को इस तरीके की कोई समस्या है तो वो बिना डरे खुल करके बात कर सकता है।
जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि एज अ फ्रेंड अप्रोच अगर यूज करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। सबसे जरूरी बात कि एक निश्चित समय हो उस बात करने के लिए कि ये समय मैंने डिसाइड किया है इस बात को करने के लिए, इस टॉपिक को यूज करने के लिए, बच्चे से बात करने के लिए उस, और एक ही बार में टॉपिक को खत्म करने के लिए हमें एम करना चाहिए। बार बार ब्रेक करेंगे तो बच्चा पहले पहले वाली बात भूल सकता है और दूसरे कॉन्वर्सेशन समझ नहीं सकता है, तो हमको एक ही बार में ये जरूरी है कि हम टॉपिक को खत्म करें। और फिर से आसान शब्दों में बॉडी पार्ट्स विदाउट शेमिंग, विदाउट ब्लेमिंग हम उनको अपनी बात पहुंचा सकें कि क्या है।
किस तरह से स्कूल्स या फिर सरकारें एक रोल प्ले कर सकती हैं, अपनी भूमिका निभा सकती हैं बच्चों को ये समझाने में कि बॉडी सेफ्टी क्या है और बॉडी सेफ्टी किस तरह से खुद की बनाई जा सकती है, और अगर उन्हें उसमें कुछ तकलीफ लगती है तो वे उस बारे में बात कर सकते हैं।
स्कूल्स में भी मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स के साथ हैं बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, लगातार रेगुलर कांस्टेंट कोशिश करते रहना चाहिए। एज एप्रोप्रिएट बॉडी सेफ्टी प्रोग्राम्स हेल्पफुल होते हैं, जहाँ पे मेरे ख्याल से पेरेंट्स से पहले अगर ये स्कूल्स में ही सिखाना शुरू कर दें तो पेरेंट्स के लिए भी आसान हो जाता है। बच्चे बहुत ही कम्फर्टेबल हो जाते हैं, टॉपिक नोन होता है उनके लिए बॉडी पार्ट्स को जानने का या फिर पेरेंट्स से शेयर करने का। बहुत अच्छा हो सकता है अगर पेरेंट्स रेगुलर बेसिस पे अपने बच्चों से बातें करते हैं, जैसे कि रोजमर्रा में स्कूल में क्या हुआ, डेली डेली बेसिस पे कि स्कूल में आज क्या हुआ, क्या पढ़ाया गया, बच्चा फिर इजीली कंफर्टेबली उनसे पेरेंट्स से ये भी बात कर सकता है। ट्रेन टीचर्स और स्टाफ का होना भी जरूरी होता है, गलत व्यवहार के संकेत को जो पहचान सके इजीली, और टीचर्स और स्टाफ रिएक्शंस भी उसी सही रिएक्शंस, एप्रोप्रिएट टाइमली रिएक्शंस दे सकें, रिस्पॉन्सेज दे सकें। एक बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत जल्दी ये चीज़ें घर कर जाती हैं, कौन उनके साथ है कौन नहीं है, किसने उनका साथ दिया किसने नहीं दिया, और यहीं पे ट्रस्टवर्दी और सेफ्टी इन्वायरमेंट हम जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ से शुरू होता है। सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, बच्चे से रेगुलर बात करते रहना, जो भी बच्चे हैं स्कूल के अंदर उनसे फ्रेंडली तरीके से बात करना। एज आई सेड कि पेरेंट्स और यहाँ पे टीचर्स की अप्रोच में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता जब हम बच्चों से बात करते हैं, स्पेशली पाँच साल से थोड़े से बड़े या फिर जो 12 साल से अंदर के बच्चों से अगर इस टॉपिक पे रेगुलरली हम बात करें तो अच्छा होता है। और मैंडेटरी रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग अगर होती है तो बच्चे के लिए भी आसान हो जाता है, उसको पता होता है कि हम कहाँ जाके किससे बात कर सकते हैं और किसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें बहुत खुल के स्कूल में बच्चे को बतानी चाहिए, और यही चीज़ें चाइल्ड केयर में होती है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड केयर एंड स्कूल, स्कूल में हमारे पास डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट एज के बच्चे होते हैं, चाइल्ड केयर में भी ऐसा ही होता है लेकिन बहुत छोटे बच्चे होते हैं जहाँ पे वो अपनी बातों को खुल के नहीं कह सकते। कुछ बच्चे बहुत छोटे होते हैं जो समझते नहीं है, बॉडी पार्ट्स को भी नहीं समझते, उस केस में आई थिंक सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉलेशन या फिर ट्रेंड बैकग्राउंड वेरीफाइड स्टाफ होना चाहिए, पॉजिटिव रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन होना चाहिए जहाँ पे बच्चे बात कर सकते हैं, और सेफ एनवायरनमेंट अगेन जो कि बहुत जरूरी है।
जी, तो यहीं से मेरा दूसरा सवाल निकल के आ रहा है डॉक्टर सिन्हा, और वो ये है कि जब माँ बाप एक चाइल्ड केयर का चुनाव करें तो किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए।
मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है कि ट्रेन्ड स्टाफ होना बहुत जरूरी है, जिनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो चुका है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन जब होता है किसी चीज का, स्कूल का या फिर चाइल्ड केयर सेंटर का, तो माँ बाप बहुत आसानी से बिहेवियर को नोटिस कर सकते हैं। जब वो अलग अलग लोगों से बात करेंगे तो उनको सेंस हो सकता है, आभास हो सकता है कि कौन सा पर्सन किस तरह का है और कितना फ्रेंडली है या फिर फ्रेंडली नहीं है। तो बिहेवियर्स को नोटिस करने के लिए जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है माँ बाप के लिए भी कि हम किस तरह से रिकॉग्नाइज करें हमारे आसपास के लोगों के बिहेवियर्स को लेकर। और यही चीज अप्लाई होती है चाइल्ड केयर सेंटर्स में भी कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट के तहत बहुत कुछ आता है। कैमराज आते हैं या फिर इंटरैक्शंस आते हैं या फिर हम किस तरह से सेफ्टी को लेते हैं, प्रोसीजर्स क्या है, पॉलिसीज क्या है, ये चीजें रेगुलर रिव्यू होती हैं या नहीं होती हैं।
और
जी
आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा डॉक्टर सिन्हा कि ऑस्ट्रेलिया में नए परिवार जो आ रहे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, जो एक चाइल्ड केयर सेंटर में खुद को डाल बच्चों को डाल रहे हैं या ऐसी सेवाएं ले रहे हैं, उनके लिए अच्छे रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे, उन्हें कहाँ पर ये पता चल सकता है कि क्या सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध हैं और क्या नियम कानून हैं?
जी कुछ चीज़ों का नाम मैं बता सकती हूँ क्योंकि वो मैं अपने क्लिनिक पे रेगुलरली यूज़ भी करती हूँ। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और परिवारों के लिए देखिए, सिर्फ आई वुड लाइक टू से कि उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ बच्चे ऑस्ट्रेलिया में बच्चों की सुरक्षा को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। बच्चा कुछ बताता है या माता पिता को कोई भी डाउट होता है, सस्पिशियस है पेरेंट्स, तो कुछ कॉन्फिडेंशियल फ्री कल्चरली सेंसिटिव सीरियस सर्विसेज अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज इनटेक, एक विक्टोरिया में है 1300-664-977। अगर बच्चा किसी डेंजर में है तो हम इमरजेंसी सर्विसेज कॉल कर सकते हैं 000। किड्स हेल्पलाइन काउंसलिंग सर्विसेज 24/7 अवेलेबल है, जिसमें 5 साल से 25 साल के एज के लिए अप्रोप्रिएट है ये सर्विसेज, और उनका नंबर है 1-800-551-800, फ्री कॉल। नेशनल सेक्सुअल असोल्ट डोमेस्टिक एंड फैमिली वायलेंस काउंसलिंग सर्विसेज 1-800-RESPECT, और मल्टीकल्चरल एंड माइग्रेंट सपोर्ट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सेटलमेंट सर्विसेज इंटरनेशनल। सो ये कुछ सर्विसेज हैं जहाँ पे आप मदद के लिए पूछ सकते हैं। बच्चे को अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो हेसिटेट ना करें, इजीली रीच आउट करें। ये सर्विसेज बहुत ही हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है।
डॉक्टर सिन्हा, आज आपने SBS को इतना समय दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया, और SBS हिंदी पर हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी सामान्य है, SBS इससे ना ही सहमत है ना ही असहमत। अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें। SBS हिंदी से आपके लिए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया विशाली जैन ने।
तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप तक लेकर आई वृषाली जैन, और जैसा कि आपने सुना, इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई सभी जानकारी जो है वो व्यक्तिगत है और SBS ना तो इससे सहमत है और ना ही असहमत। चलिए, मैंने आपको कहा था कि मैं आज आपके लिए एक फिल्म के डबल पासेस लेकर आऊंगी, तो आपको बता देती हूँ कि ये कौन सी फिल्म है। कुछ ही समय में वॉर 2 रिलीज होने वाली है, जिसमें ऋतिक रोशन है और कियारा आडवाणी भी होंगी, तो इसके डबल पासेस मैं आप तक लेकर आई हूं। और इससे जुड़ा जो सवाल है वो ये है कि इस फिल्म में, जिसका नाम है वॉर 2, और इसमें अभिनेता ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी भी देखी जाएंगी, इसमें कौन से एक्टर का डेब्यू हो रहा है, मतलब कौन सा ऐसा अभिनेता है जो कि पहली बार इस स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म में काम करेंगे। नंबर है 04397997667। आप अपने जवाब हमें इस नंबर तक भेज सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम के और फेसबुक के माध्यम से भी अपने संदेश यानी अपने जवाब भेज सकते हैं। आपको बता दूं कि आप जब अपने जवाब हमें भेजेंगे तो अपना पूरा नाम और पता जरूर भेजें, क्योंकि ये जो टिकट्स हैं वो आप तक पोस्ट के माध्यम से भेजी जाएंगी। तो आपके पास 7 तारीख तक का समय है अपने अपने जवाब भेजने का, और 7 तारीख को 10 बजे तक आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं। और 7 तारीख के शो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस बार ये जो डबल पासेस हैं ये किन किन लोगों ने जीते हैं। तो जल्दी से अपने फोन उठाएं और हमें 04397997667 पर अपने जवाब भेज दें। चलिए यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और लौटकर मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी मशहूर भारतीय कॉमेडियन अंकिता श्रीवास्तव के साथ। सुनते रहें SBS हिंदी।
अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है SBS हिंदी पर। तो स्टैंड अप कलाकार और अभिनेत्री अंकिता श्रीवास्तव, जो कि हाल ही में अपनी सफल ऑस्ट्रेलिया यात्रा से लौटी हैं, बताती हैं कि भारत में कॉमेडी का जो भविष्य है वो सुनहरा है और भी उज्जवल हो जाएगा। एक सच्ची और ईमानदार प्रतिक्रिया में उन्होंने दर्शकों की गर्मजोशी, सोशल मीडिया की भूमिका और एक बढ़ता हुआ रचनात्मक मंच बताया है, जहां कॉमेडियन, खासकर की जो महिलाएं हैं, वो अपनी पहचान बना रही हैं। अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा को ताजगी से भरी और संतोषजनक बताते हुए अंकिता कहती हैं कि वे अगले 2 सालों तक इस अनुभव के प्रभाव में ही रह सकती हैं और फिर से लौटकर यहां प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। तो आइए सुनते हैं ये अंश, आप तक लेकर आ रही हैं ज्योतिका।
नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कला की जो हंसी के साथ साथ दिलों को भी जोड़ती है, यानी कॉमेडी। भारत में कॉमेडी का परिदृश्य 2025 में और भी रंगीन हो गया है, जहां एक ओर जॉनी लीवर जैसे दिग्गज कलाकारों ने आधुनिक कॉमेडी में बढ़ती अशिष्टता पर चिंता जताई है, वहीं दूसरी ओर वीरदास जैसे कलाकारों ने अपनी स्टैंड अप स्पेशल्स से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम रोशन भी किया है। इसके अलावा अंकिता श्रीवास्तव जैसे एक एक्टर से कॉमेडियन बना चेहरा भी अपनी अनूठी शैली से दर्शकों का दिल जीत रहा है। अंकिता श्रीवास्तव हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी और इसी दौरान SBS हिंदी ने उनसे खास मुलाकात की। मशहूर कॉमेडियन और कॉमेडियन से पहले एक बहुत ही अच्छी अदाकारा एक्ट्रेस अंकिता श्रीवास्तव आज हमारे साथ हैं। अंकिता जी, SBS हिंदी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा था है ऑस्ट्रेलिया दौरा?
बहुत ही सुंदर। अभी तक हमने 2 शहर कवर किए हैं, सिडनी और मेलबर्न, और ऑडियंस बहुत प्यारी रही है और मुझे अभी तक बहुत मजा आया यहाँ परफॉर्म करते हुए। अपने लोगों के बीच एक दूसरे देश में आकर परफॉर्म करने का मजा ही कुछ और है।
वाओ। अच्छा ये बताइए कि पहले आप फिल्मों में एक बहुत अच्छे अच्छे रोल निभा चुकी हैं, एक बेहतरीन अदाकारा आप रह चुकी हैं, और अब आप स्टैंड अप और डिजिटल कंटेंट की तरफ मुड़ चुकी हैं, किस तरह से आपने इस पूरे मीडियम को अप्रोच किया है और किस तरह से, क्या कोई चैलेंजेस थे या बहुत आसान लगा?
बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं थे, मतलब हर जर्नी के अपने होते हैं वैसे, बट आई थिंक वो ट्रांजिशन ऑर्गेनिकली हुआ। और द गुड थिंग वाज कि पिछले 4-5 सालों में ये इकोनॉमी डेवलप हुई, ये डिजिटल और क्रिएटर इकोनॉमी, और हमें एक सिस्टम मिला जिसमें हम उसका हिस्सा बन पाए। एंड आई थिंक वी गॉट वेरी लकी एज वेल दैट वी आर लिविंग इन टाइम्स व्हेन समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग।
राइट। तो ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों से भी आई एम श्योर मिलना हुआ होगा, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, कैसे लगे आपको ऑस्ट्रेलिया के लोग?
बहुत ही प्यारे लगे। मतलब यहाँ अपने लोगों से मिलके तो जो मजे आए आए, बट व्हेन वी स्टेप्ड आउट एंड हम दूसरे ऑस्ट्रेलियन से भी मिले और जो दूसरे देशों के लोगों से मिले, आई थिंक यहाँ कल्चर काफी अच्छा है, पीपल आर काइंड, वेदर इज सो नाइस, तो आई रियली लाइक्ड एवरीथिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया सो फार।
अंकिता, अब कॉमेडी की अगर बात को आगे बढ़ाऊं तो बहुत जरूरी होता है किसी भी कला को उसको ब्रश अप करने के लिए, उसको और गहराइयों तक जानने के लिए गुरु की जरूरत लगती है। किस तरह से आपने कॉमेडी में जब एंट्री की, कौन था जिसने आपको इंस्पायर किया, किसी को आपने गुरु माना, या किस तरह से आप इस प्रोफेशन में आगे बढ़ रही हैं?
मैं गुरु तो नहीं कहूंगी, बट आई थिंक आई विल होल्ड जो मेरे 4 दोस्त हैं जो मेरे शुरू के जोक्स पे हंस दिए रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग मी हियर, अगर वो ना हंसे होते तो मैं यहाँ नहीं होती। तो उन्होंने मुझे फंसा दिया इसमें पुश मार के, तो आई थिंक दोज आर द पीपल हु इंस्पायर्ड मी टू डू दिस, वेदर इट वाज राइट और रॉन्ग ओनली टाइम विल टेल।
जी, तो अभी तक तो सब राइट ही चल रहा है, कुछ रॉन्ग लग रहा है आपको?
नहीं, अभी तक तो सब सही चल रहा है.
राइट,
मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ. व्हाट अ प्रिविलेज ज्योतिका, थैंक यू फॉर हैविंग मी. सो आई थिंक इट्स मोर देन राइट सो फार.
राइट, तो सारा क्रेडिट जाता है फिर उन दोस्तों को, उनकी पार्टीज वगैरह नॉनस्टॉप चलती हैं जब एक अच्छा शो हो जाता है, सक्सेसफुल शो हो जाता है.
हाँ, अगर इंडिया में है तो डेफिनेटली, इफ यार हम मुंबई में है तो, एंड सब अपने अपने कामों के साथ बिजी भी होते हैं, बट यस डेफिनेटली.
राइट, अंकिता बहुत मुश्किल होता है किसी को हंसाना और उस पर काम भी करना पड़ता है स्टेज पर चढ़ने से पहले, तो किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशंस करती हैं? आपका मटेरियल कौन लिखता है? क्या आप उस पर खुद काम करती हैं या फिर आपके साथ राइटर्स की एक टीम चलती है? किस तरह से चलता है ये पूरा प्रोसेस?
कॉमेडी ज्योतिका बहुत ही ना, इट्स एन आर्ट फॉर्म जिसमें आपको अपनी कहानियां कहनी होती हैं. तो शुरुआत तो आप खुद ही करते हो, एंड देन ऑब्वियसली आपके साथ कुछ लोग होते हैं जुड़े हुए कंसिस्टेंटली, जो आपको बताते हैं कि सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सिर्फ आपके लिए फनी है कि दुनिया भी इससे रिलेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. एंड देन ऑब्वियसली ऑडियंस इज द बेस्ट जज फॉर एवरीथिंग. तो आप अपने शोज करते हो तो आपको खुद ही समझ आ जाते हैं कि भाई ये वाला सही है या नहीं है. सो दैट इज हाउ द प्रोसेस इज. आई थिंक इट हैज टू कम फ्रॉम अ स्पेस दैट इज वेरी पर्सनल फॉर यू, फॉर द वर्ल्ड टू रिलेट टू इट.
जी अंकिता जी, अगर भारत में कॉमेडी की बात करूं तो कई मायनों में अभी भी जो कॉमेडी है भारत में वो अपना रास्ता कहीं ढूंढ रही है, अपनी आवाज़ कहीं ढूंढ रही है. हाल फिलहाल में हमने देखा जिस तरह से कॉमेडी को लेकर कई काफ़ी कुछ खबरों में छाया रहा है. क्या एक अच्छी कॉमेडी को अभी जो भारतीय ऑडियंस है वो एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी हिचकिचा रही है?
मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता. अच्छी कॉमेडी तो चली रही है हमारे पास. वी हैव वीर दास हमारे पास, उनसे पहले भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट रहे हैं, जॉनी लिवर हो गए, अमित तंडन जी हो गए. तो हर चीज़ की एक अच्छी ऑडियंस है इफ द वर्क इज डन वेल. बट द थिंग इज, किसी भी आर्ट फॉर्म को डेवलप होने में टाइम लगता है, और जब कोई चीज़ डेवलप हो रही होती है तो उस स्टेज पे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है. और जब आप किसी बारे में किसी भी मुद्दे पर रिस्क लेंगे तो वो चीज़ें किसी भी दिशा में जा सकती हैं. तो वो मंथन होता है ना, समुद्र मंथन जैसे, तो उस मंथन में वक्त लगता है. तो दोनों ऑडियंस और आर्टिस्ट दोनों ग्रो होंगे साथ साथ, एंड आई थिंक वी विल गेट देयर वेरी सून.
आपने आर्टिस्ट की बात की, और अगर मैं खास तौर पर फीमेल आर्टिस्ट की बात करूं और फीमेल कॉमेडियंस की बात करूं, हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं बहुत सारी फीमेल जो कॉमेडियंस हैं वो उभर कर सामने आ रही हैं. लेकिन भारतीय समाज में एक फीमेल कॉमेडियन को स्टेज पर जब देखा जाता है तो एक प्रेशर माना जाता है कॉमेडियन के ऊपर. क्या आप इस प्रेशर को मानती हैं? और अगर आपको ऐसा प्रेशर फील होता है तो कैसे आप इसको हैंडल करती हैं?
प्रेशर एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट तो रहता ही है. वो फीमेल वाला प्रेशर इज द एडेड प्रेशर, बट उसे मैं इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ. बिकॉज ऑल्सो आई थिंक इतने सालों से ना आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, जस्ट बींग अ वुमन इन एन इंडियन सोसाइटी सॉर्ट ऑफ ट्रेन्स यू कि आप थोड़े से थिक स्किन हो जाओ और दुनिया के ओपिनियन को ना ही मानो. एंड दैट इज द ओनली वे यू कैन बिकम एन आर्टिस्ट इन एन इंडियन फैमिली, राइट? तो और कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है. आप यू टेक गॉड्स नेम, यू पुट योर हेड डाउन एंड यू डू योर वर्क. दैट्स द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड.
राइट, अगले कुछ सालों में आप इंडियन कॉमेडी को किस ओर जाते हुए देखती हैं?
आई थिंक बहुत ही सुनहरा टाइम चल रहा है इस वक्त, और इट्स ओनली गोइंग टू गेट बेटर. एवरीबडी इज ग्रोइंग, हर कोई अपनी अपनी जगह ढूंढ रहा है, और मिल भी गई है काफी लोगों को अपनी जगह. और ऑडियंस इतनी वेलकमिंग एंड वार्म रही है टू दिस फॉर्म ऑफ एंड यू नो टू दिस फॉर्म ऑफ कॉमेडी जो अभी पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं हुई है. तो यू सी द यूट्यूब व्यूज, यू सी कॉर्पोरेट शोज, एवेन्यूज इतने खुल गए हैं हमारे लिए, है ना? इट्स नॉट जस्ट वन थिंग एनी मोर. तो आई थिंक दिस इज द गोल्डन पीरियड एंड इट्स ओनली गोइंग टू गेट बेटर फ्रॉम हियर.
क्या आप कहना चाहेंगी चलते चलते, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आई एम श्योर बहुत सारे यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट्स हैं उनसे भी मुलाकात आपकी ज़रूर हुई होगी, किस तरह के एक्सपीरियंस रहे और क्या कहना चाहती हैं आप कॉमेडी को लेकर, लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं?
कि देखें, अगर कोई भी आर्टिस्ट आपके देश में आए तो कम वॉच दिस आर्ट फॉर्म, वॉच अ लॉट मोर शोज, एंड मुझे जरूर फॉलो करें. फिल्मी चोकरी यूट्यूब चैनल है मेरा, डोंट फॉरगेट टू डू दैट. एंड आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस परफॉर्मिंग इन सिडनी एंड मेलबर्न सो फार. आई कांट वेट टू कम बैक अगेन एंड परफॉर्म like multiple times, and next time jab is baar main samay kam lekar aayi thi, I hope the next time that I come you know I'm able to see the country a little more, kyunki itni tareef hai suni hai maine. Abhi hum ek ek din lekar aaye hain to bahut limited time mein jo cheeze dekh paaye, but so far it felt so fresh and so nice to be in a different country and to perform for the people of your country, and how you know they shower you with love and encouragement. Ek artist ko apni journey mein na yahi kuch pushes chahiye hote hain, and this is matlab is ek tour ke balbute pe main agle kuch saal survive kar jaungi. Sirf itni mujhe khushi mil gayi hai ki you know you should continue doing this, and you need these signs in life. So I would only love to thank all the organizers and everybody who made sure that I come to Australia and I have such a great time.
Aur agar filmon mein koi acha role aapko offer hota hai to kya wapsi hogi?
Haan bilkul, kyun nahi. I mean who's to say kya hone wala hai aage, but yes of course, and it should be worth my time, and it should be a good role, it should be there's so many things when it comes to films, it's never just one factor.
Ankita ji, SBS Hindi se baat cheet karne ke liye bahut bahut shukriya.
Thank you so much Jyotika, thank you for having me.
मैं हूँ SBS हिंदी से ज्योतिका। इस तरह के तमाम पॉडकास्ट और बाकी प्रस्तुतियों के लिए जुड़े रहिएगा SBS हिंदी के साथ।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने? इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।